कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल पितामह भीष्म ने कई बातें बताई, विषयों से कैसे चित्त को हटाया जाए, कैसे आसक्ति का नाश किया जाए। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि पितामह, हम कृष्ण के साथ रहते तो बहुत दिनों से हैं और इनके बारे में सुना है कि साक्षात भगवान नारायण हैं, गोविंद हैं, अपराजेय हैं। यह भी सुना है कि भूतानाम प्रभवाप्ययम्, प्राणियों को पैदा करने वाले हैं और प्राणियों को अपने में लीन भी करने वाले हैं। आप इनके वास्तविक तात्विक रूप को बताइए महाराज। पितामह भीष्म कहने लगे कि देखो, आज तक जितने ऋषि हुए, नारद जी हो, व्यास जी हो, परशुराम जी हो, असित हो, देवल हो, वाल्मीकि हो, मार्कंडेय हो, सब ऋषि मुनि एक ही विचार करते हैं कि कृष्ण का तत्व क्या है। तो सबसे पहला तो ये बताते हैं कि एक भगवान कृष्ण ही थे, कुछ नहीं था। ये तेजोमय थे, एकदम देदीप्यमान। फिर उन्होंने अपने में से संकर्षण को उत्पन्न किया। जो कि संकर्षण संपूर्ण प्राणियों को अपने में धारण करते हैं। फिर इनके नाभि में से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा के शरीर के एक मैल से मधु नाम का दैत्य पैदा हुआ। बड़ा उग्र स्वभाव का था। भगवान पुरुषोत्तम ने देखा कि अरे, ब्रह्मा जी के मैल से पैदा हुआ ये तो फिर मैल ही मैल करेगा, गंदगी फैलाएगा, बड़ा शूरवीर हो गया ये तो, इसको मार डालना ही ठीक है, नहीं तो मेरी सारी सृष्टि को चौपट कर देगा। तब भगवान ने उसको मार दिया तो उनका नाम मधुसूदन हुआ। ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी, अब आप अपना संकल्प करो और सृष्टि बनाओ, संकल्प करो और सृष्टि बनाओ। तब उन्होंने 7 प्रजापति बनाए। उनमें से एक दक्ष प्रजापति भी थे। दक्ष प्रजापति के कई लड़कियां थी, उनका अलग अलग विवाह हुआ। उन्होंने दिति अदिति आदि का विवाह कश्यप जी के साथ किया। दिति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य हुए। दनु नाम की पत्नी थी, उससे दानव पैदा हुए। भगवान ने देखा कि इस प्रकार सृष्टि तो पैदा हो रही है, परंतु सृष्टि के लिए एक कायदा कानून होना चाहिए। तब उन भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। पापियों के लिए दंड व्यवस्था में यमराज जी को नियुक्त कर दिया। जल के ऊपर वरुण की नियुक्ति कर दी। सारे देवताओं में इंद्र को देवाध्यक्ष बना दिया। शुरू शुरू में जितने दिन तक प्राणियों को जीने की इच्छा रहती थी तब तक वो शरीर दिए गए, क्योंकि प्रारंभ में पाप वगैरह नहीं होते थे, बड़ा अच्छा समय था। ऐसे प्राणियों के जीने में भगवान को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आगे चलते चलते प्राणियों में पाप की वृत्ति पैदा हुई, स्वार्थ की वृत्ति पैदा हुई, तो फिर भगवान ने उनके पास वो शक्ति नहीं रखी कि मर्जी आवे उतना जियो, फिर उनके ऊपर कर्मों का फल लागू हो गया। और फिर जो शरीर थे, पहले वो शरीर मानसिक शरीर होते थे, अब वो स्त्री और पुरुष के संयोग से शरीर बनने लगे। इस प्रकार से ये संसार चक्र बना। कई कई नीच जाति के प्राणी थे, जैसे चूचक है, मद्रक है, शबर है, पुलिंद है, आंध्र है, ये सब म्लेच्छ हैं। इन सब को दक्षिण की तरफ विंध्याचल पर्वत के उधर दक्षिण की तरफ भेज दिया। श्रेष्ठ पुरुष है वो विंध्याचल पर्वत के उत्तर की तरफ रहने लगे। भगवान कृष्ण सम्यक तया देखा जाए तो सब प्राणियों की आत्मा है, वो भगवान ही है। नारद जी महाराज संपूर्ण पृथ्वी का परिभ्रमण करने के बाद हिमालय के वहां आए। वहां पर एक सरोवर था, उस सरोवर में खूब अच्छे कमल के फूल खिले हुए थे। नारद जी ने वहां स्नान किया और विचार किया कि भगवान का स्वरूप क्या है। ऐसे विचार करने के लिए बैठ गए, कौन सा स्वरूप हो सकता है। ऐसे में वे तत्वानुसंधान करने लगे, माने वो भगवत तत्व को जानने के अंदर डूब गए। सैकड़ों बरस तक उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया। भगवान को बड़ी दया आई, कृपा की, और वे भगवान अकस्मात नारद जी के सामने अपने सगुण रूप से प्रकट हो गए। जगन्नाथ भगवान को अपने सामने नारद जी ने देखा, गरुड़ के ऊपर विराजमान है, और वेन तये पद स्पर्श किण शोभित जानुकम। यहां पिंडलियों पर गरुड़ के ऊपर बैठने से, रगड़ लगने से थोड़ी चमड़ी कठोर बनी हुई है। पीतांबर के पहनने में और कटी तट है, इमन कमर के अंदर सोने की सांकल है, बहुत अच्छी लगती है। भगवान के मुखारविंद के ऊपर एक आकर्षक मुस्कान है, मंद मुस्कान, मंदस्मित मुखाम्बोजम, मंद मंद स्मित, और फिर वो भी आकर्षक है, और चलद आयत लोचनम, और नेत्र यूं चंचल है, इंद्रनील मणि के समान उनका श्री विग्रह है। उनके भुजाओं में केयूर और सिर पर मुकुट है, अनेकानेक देवता उनके आगे आगे चल रहे हैं, उनके पास में बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि समुदाय हैं। ऐसा भगवान का दर्शन किया, नारद जी अवाक रह गए, चित्र लिखित हो गया, अरे इतना सुंदर रूप इनका। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, नारद जी से कहा, नारद बोलो, तुम क्या चाहते हो बोलो। नारद जी के मन में इतना प्रेम उमड़ा कुछ बोल ही नहीं सके। ऐसे बोलने का प्रयत्न करते हैं पर आनंद के कारण से बोला ही नहीं जाता। भगवान कह रहे भद्रमस्तु आपका कल्याण हो नारद जी, कोई वरदान मांगो बोलो आप क्या चाहते हो। आप जो चाहते हो सो देने के लिए तैयार हूं, उसी के लिए आया हूं। नारद जी ने शिवाय जयकार के अलावा हे महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपका स्वरूप देख लिया। नारद जी जैसे कोई पानी में डूब जाता है ऐसे वो आनंद में डूब गए, उनसे कुछ बोला नहीं गया और बड़ी मुश्किल से कहने लगे कि हे ऋषिकेश मैं आपका तत्व सुनना चाहता था, आप क्या है। तब भगवान ने कहा कि देखो मेरा तत्व मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो निर्द्वंद हैं, निरहंकार हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनके नेत्रों से कृपा टपकती है, बड़े सहिष्णु हैं, बड़ी दिव्य मूर्तियां हैं, उनके पास जाओ और उनका कृपा प्रसाद है वही मेरा प्रसाद समझो। भगवान भी आनंद में डूब गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी महाराज वहां बैठे रहे, अपने हृदय में भगवान से खूब बातें करते रहे। भगवान तो अंतरित हो गए, भगवान से बातें करते। पितामह भीष्म ने कहा कि मैंने नारद जी से पूछा, नारद जी उस समय आपकी क्या अवस्था हुई थी। नारद जी कहने लगे कि भीष्म अवस्था तो अनुभूति है ना, अनुभूति कहने में नहीं आ सकती ना। जो कुछ घटा उन्होंने बता दिया लेकिन अनुभूति क्या हुई वो भी नहीं बता सकते। तुमने कहा कृष्ण का तत्व समझाओ युधिष्ठिर, वो समझा नहीं जाता, वो समझाया नहीं जाता है, अनुभूति का विषय है। युधिष्ठिर ने कहा वाह महाराज ऐसे मुझे दादा मिले आप, क्या आपको समझाने का तरीका लगा है। महाराज ब्रह्मा जी ने जब प्रजापतियों को पैदा किया तो फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, कभी प्रत्येक दिशा में उन्होंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतियों को नियुक्त कर दिया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु वशिष्ठ ये सब सब दिशाओं में रख दिए। इस प्रकार से सृष्टि का काम चलने लगा। युधिष्ठिर एक बार में शिकार खेलने गया तो मैं छोटी अवस्था में था, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया शिकार खेलते खेलते, जाने क्या बात थी बचपन से मुझे संतों के बीच में बैठना, संतों से कुछ सुनना, संतों के जीवन की बातें जानना बहुत अच्छा लगता था। मार्कंडेय आश्रम के अंदर देखा हजारों हजारों ऋषि मुनि आए हुए हैं, मैं भी वहां पहुंच गया। मार्कंडेय ने देखा कि राजपुत्र आया है, मुझे कहा आओ देवव्रत कहां से आए हो। सब ऋषियों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और मुझसे कुशल क्षेम पूछी, मेरे राज्य की कुशल क्षेम पूछी। मैंने कहा महाराज मैं तो शिकार खेलते खेलते आया और आपके आश्रम के अंदर इतने ऋषियों को देखकर आपके चरणों में बैठकर कुछ सीखने के लिए आया हूं। तो बड़े प्रसन्न होकर वहां आए हुए कश्यप जी ने कहा कि देखो देवव्रत, चाहे कोई आदमी कितना ही हमारा बुरा करे, परंतु यदि भगवान की रक्षा हमारे पर है तो फिर निर्भय रहना चाहिए। तुम्हारे हस्तिनापुर में अनेक प्रकार के विघ्न आए और भी विघ्न आ सकते हैं, पर तुमको सदा भगवान का आश्रय रखना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि महाराज, इस सृष्टि के अंदर किस पर कैसा संकट पड़ा और कैसे भगवान ने रक्षा की कि पृथ्वी पर, क्या पृथ्वी स्वयं ही संकटग्रस्त हो गई थी? पृथ्वी पर आने वाले संकट नहीं, स्वयं पृथ्वी संकट में पड़ गई। महाराज ये क्या हुआ? कहते हैं पहले बड़े बड़े दैत्य लोग थे और वो देवताओं को कुछ समझते ही नहीं थे। देवता लोग हैं, हम लोग हैं, प्रजापति लोग हैं, देवर्षि लोग कुछ नहीं समझते थे ये, और हमको सबको डरा धमका करके उन लोगों ने सारी पृथ्वी को रसातल में ले जाकर डुबो दिया। उसको सारे देवता चिल्लाए, अदिति के बेटा भी थर थर कांपने लग गए। ब्रह्मा जी से बोले, कथम सक्ष्यामहे ब्रह्मन्, हे महाराज, इन दुष्टों से हम कैसे सक सकेंगे? ये दानव तो हमको रौंदते जा रहे हैं, अभिमान में डूब गए हैं, घोर अन्याय कर रहे हैं। हम लोग तो यूं प्रार्थना कर रहे थे, भगवान देखो कृपालु, हे देवव्रत, भगवान ने उसी समय एक वराह का रूप धारण किया। बड़ा अलौकिक स्वरूप था उनका, चार भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म, और वो ही मुकुट धारण किया हुआ, केवल अपने आगे का जो मुख था वो वराह जैसा बनाया, दांत थे आगे। वराह का रूप बनाया भगवान ने क्योंकि वराह है उसमें स्फूर्ति होती। दांत वाले दो प्राणी होते हैं बड़े, एक तो हाथी होता है, एक जो वराह होता है, सुअर होता है। इन दोनों के दांत हैं, बाहर निकले हुए रहते हैं। हाथी का रूप क्यों नहीं बनाए तो भगवान जाने, पर हम तो ये अनुमान लगाते हैं कि हाथी का रूप इसलिए नहीं बनाया कि हाथी में फुर्ति नहीं होती। भगवान यदि हाथी का भी रूप बनावे और फुर्ती भी लावे, ये असंभव बात नहीं थी, पर भगवान वराह अवतार के द्वारा इस पृथ्वी की बड़ी स्वाभाविकता को बताने के लिए ऐसा किया। और फिर उन्होंने कई दैत्यों को वहां पराजित किया और फिर पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार हुआ, फिर जो है वहां बड़ी भारी भगवान ने गर्जना की। उस गर्जना से सब कांप गए कि ये गर्जना कैसी है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे प्राणियों घबराओ मत, सर्वभूतेश्वर है योगी मुनिरात्मा तथात्मन है, स्त्री भवत कृष्णोयम सर्व विघ्न विनाशन है। ये भगवान का विजय के अंदर नाद हो रहा है, सिंह नाद हो रहा है, भगवान विजयी हो गए। इसलिए वही भगवान, अच्युत भगवान, संपूर्ण प्राणियों के आदि भगवान, कृपालु भगवान, तुम तो अभी तक सोच रहे क्या करें, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार ही कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब देखो अपनी भगवद गीता है ना, इसमें ये पंचरत्न गीता नाम है इसका, इसमें एक तो भगवत गीता है, विष्णु सहस्र नाम है, भीष्म स्तवराज है, अनुस्मृति है, गजेंद्र मोक्ष है, पांच है। तो गीता है ये तो पहले सुना दी, भीष्म स्तवराज है ये भी भगवान ने भगवान के सामने पितामह भीष्म ने यहां शांति पर्व में सुना दिया। अब ये अनुस्मृति चल रही है, अनुस्मृति में सारांश बता देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि दादाजी मृत्यु के समय में मोक्षकांक्षी को क्या करना चाहिए, जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए। तो पितामह कहने लगे सद्युक्ति सद्युक्ति सहित सूक्ष्म है, तुमने तो बहुत अच्छी बात पूछी है भाई। ये नारद जी ने पहले पूछा था वो मैं तुमको बताता हूं। नारद जी से मैंने सुना था, एक बार की बात है कि भगवान नारायण के सामने नारद जी ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया, निवेदन किया, और प्रश्न भी किया कि हे महाराज आप तो अक्षर परब्रह्म परमात्मा हो, आपके नाभि कमल से ब्रह्मादि पैदा हुए, जिनसे सारी सृष्टि पैदा हुई है, हम भक्त लोग जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं उनको किसका जाप करना चाहिए, प्रातःकाल उठते ही कौन सा मंत्र जपे, ध्यान से सुनना हो, उठते ही कौन सा मंत्र जपे, क्या ध्यान करें, इसके विषय में बताओ। तब भगवान ने कहा कि हे नारद बड़ा सुंदर मंत्र बताता हूं और बड़ा सरल मंत्र बताता हूं, उसके उच्चारण में कोई कठिनता नहीं होगी, प्रातःकाल जल्दी उठ करके दम चुपचाप बैठ करके शांत मना होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे ऊंचा मुझे कोई मंत्र मालूम नहीं देता, सबसे ऊंचा मंत्र है। नारद जी बड़े गदगद हो गए और प्रणाम करने लगे, हे महाराज आप अव्यक्त हो, शाश्वत हो, पुराण पुरुषोत्तम हो, त्रिलोकी के नाथ हो, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, चंद्रमा के अंदर जो शैत्य है, शीतलता है, अमृतपना है, वो आपका रूप है। सांख्य और योग है, सांख्य योगी और कर्मयोगी और दूसरे महापुरुष वे सब संसार से मुक्त हैं। हे प्रभु आप मेरे पर भी प्रसन्न हो जाओ। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणस त्वाम विशन्ति विनिश्चिताः, ज्ञान रूपी अग्नि से जिन्होंने कर्मों को जला दिया है, अर्थात कर्म करने की एक ऐसी स्थिति है कि जहां अज्ञान का नाम निशान नहीं, राग द्वेष का नाम निशान नहीं, ज्ञानाग्नि से जिन्होंने कर्म को समाप्त कर दिया, ऐसे महापुरुष आपके अंदर समा जाते हैं। हे महाराज मैं आपसे वरदान चाहता हूं कि मेरी इंद्रियां और इनकी प्रवृत्तियां कभी भी विषयों में न जाए, विषयैर इंद्रियैर वापी नमे भूय समागम है, हमारा अब इंद्रियों से और विषयों से संबंध न हो। घ्राणेन्द्रिय है ये नाक है, ये पृथ्वी में लीन हो जाए, ये जीभ है रसना है, ये जल में लीन हो जाए, नेत्र है वो आग में लीन हो जाए, और स्पर्श माने त्वचा है ये वायु में लीन हो जाए, श्रोत्र है वो आकाश में लीन हो जाए, मन है ये सात्विक अहंकार में लीन हो जाए, सब अपने अपने कार्य अपने अपने कारणों में लीन हो जाए, और जब मेरी मृत्यु आए तो त्वामेव अहम् स्मरिष्यामि, ये मेरे प्राण आप में रहे और आप मुझे याद आते रहे, मरण समय में आप अपनी याद हमको दे दो। बड़ी सुंदर बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्व देह कृता ये मे व्याधय प्रविशन्तु माम, मेरे जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों के बदले में जितनी बीमारियां मेरे शरीर में लगाओ उतने ही अच्छा रहेगा। अनुध्यायतो उस देवेश, मैं तो आपका निरंतर ध्यान करता रहूं ताकि मेरा जन्म न हो और मेरे अंदर कोई ऋण न रहे। जितना मेरा पाप कर्म भुगताना चाहो, बीमारियों से भुगताओ, भयंकर से भयंकर बीमारियां दे हमको। देखो अपने लोग तो सोचते हैं, हे भगवान मर जाए सीधा है तो कोई बात नहीं, बीमारी मत देना। संतों की गति रामदास, जग से लखी नहीं जाए। संत विचित्र बात बोलते हैं, बार बार बोले उपतिष्ठन तो माम सर्वे व्याधे पूर्व संचिता, पूर्व संचित सब बीमारियां आ जाए ताकि सबका ऋण चुका दूं और मैं आपके धाम में पहुंच जाऊं। भगवान कहने लगे, हे नारद, जो मेरी भक्ति करता है वो मेरी दृष्टि में नष्ट नहीं होता और उसकी दृष्टि में मैं नष्ट नहीं होता हूं। तुम अपने इंद्रियों से परे अपने स्वरूप को समझो, अहंकार से अलग अपने स्वरूप को समझो और अपने स्वरूप को मेरे स्वरूप में लीन कर दो। बस मृत्यु के समय में यही सबसे बढ़िया प्रक्रिया है, अपने आप को मुझमें लीन कर देने के बाद तुम्हारे कोई पाप नहीं रहेंगे, फिर उनका फल बीमारी वगैरह आएगी क्यों? आओ तो आओ, मरने समनुप्राप्ति यश्चैव माम अनुस्मरेत अपि पाप समाचार है सयाति परमांगतिम। कितने उसके पाप पड़े रहो वो मेरे अंदर लीन हो जाता है, क्योंकि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको संतों ने बताया है कि जैसे वो डब्बू होता है, बचपन में फुलाते थे यूं, अपने सब फुला देते यूं, उसको चौड़ा करके फिर हवा भरते, इतना बड़ा हो जाता। तो वो डब्बू है, उसमें क्या हवा भरते जाओ, फौट फूटता था वो। तो हवा भरने के बाद जब वो फूट जाता था तो फिर वो किसी काम का नहीं, फिर तो बस उसमें एक अंगुली डाल करके छोटी छोटी बनाकर यूं उसको कर देते, वो डब्बू नहीं होता था वो। तो ऐसे ही जब वो मेरी भक्ति के अंदर आते, मेरे अंदर लीन हो जाता है, तो लीन हो जाने के बाद फिर उसके कोई कर्म उसमें नहीं रहते। अब वो फूट गया डब्बू, अब कितनी फूंक डालो उसमें, वो फूंक से फूलेगा नहीं, फूंक इसमें इकट्ठी होगी नहीं। ऐसे ही मेरे अंदर लीन हो जाने के बाद फिर उसके कर्म टिकते नहीं है। सबसे बड़ा सरल उपाय बताता हूं, नमः इत्येव यो माम ब्रूयात, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे प्रभु आपको नमस्कार है, बस इतना बहुत है। नमः इत्येव यो ब्रूयात मद भक्त है श्रद्धयान्वित है तस्याक्षयो भवेल्लोक है स्वपाकस्यापि नारद। स्वपाक माने स्वयं माने कुत्ता, कुत्ते का मांस खाने वाला हो ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि वो मरते मरते हे राम हे प्रभु हे नमस्कार आपको, हे प्रभु नमस्कार है, बारंबार नमः, बस सब पाप खत्म। देखो मरण काल में मैं छूट देता हूं, लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय में वो बेहोश रहता है तो बेहोशी की अवस्था नहीं मानी जाती। कोई आदमी बेहोश होता है और मरता है वो कोई नाम नहीं लेता, उसकी क्या गति होती है कि वो गति मानी नहीं जाती। होश रहते हुए क्या बोला है, होश रहते हुए उसने क्या ध्यान किया है, बेहोश हो जाए तो हो जाए भाई, बेहोशी अवस्था का कोई जो है लोक परलोक पर असर नहीं पड़ता। इसलिए होश रहते हुए उसको मेरा स्मरण करते रहना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि नारद जी ने ये सब बात कही, वो मैंने तुमको सुना दी। इमाम रहस्याम परमाम अनुस्मृतिम, इसको अनुस्मृति के नाम से कहा जाता है। अधित्य बुद्धिम लभते च नैष्ठिकीम, सेठ जी को ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा हो इसलिए पंचरत्न गीता में अनुस्मृति दी है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि महाराज ये मोक्ष प्राप्ति वाला योग क्या होता है। कहते हैं देखो भाई, एक गुरु जी थे और एक चेला जी थे। तो चेले ने कहा, गुरु महाराज मैं इतने दिन से आपके पैर दबाता हूं, आपकी सेवा करता हूं, क्या आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा ये सब क्या है। तो गुरु जी ने कहा, देख भाई, भगवान वासुदेव है ना, इनके मुख से वेद निकला है और उस वेद में सत्य है, ज्ञान है, यज्ञ है, तितिक्षा है, इंद्रिय संयम है, सरलता है, ये सब कुछ बातें बताई जो भगवान से अभिन्न है, ये सब वासुदेव है। जो कृष्ण है वो अक्षर अव्यक्त निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों ही है। वो जो तुमको नजर में आता है वो भगवान से अलग नहीं है, पूर्ण रश्मियां सूर्य की मरीचियां किरणें कहां से कहां तक फैलती, वो सूर्य से जुड़ी हुई रहती है। इसी प्रकार से संपूर्ण संसार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि परमात्मा तो अलग रह जाते हैं और संसार अलग रह जाता, ऐसा नहीं है। ये जीव वास्तव में जन्म मरण से रहित है, अजरो अमरस चैव है, परंतु ये मरण धर्मा के साथ मिलकर अपने को मरण धर्मा वाला मान लेता है। स्वप्न में आदमी इंद्रियों के साथ मिला हुआ एक नया ही शरीर धारण करता है और जो उसका असली शरीर यहां पड़ा रहता है, अंदर ही अंदर वो नया शरीर, नया ही जंगल, नया ही आदमी, नई सृष्टि। ऐसे ही आदमी जब मर जाता है तो अपने संकल्पों के अंदर वो घूमता रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने संकल्प सुधारने चाहिए। एक परमात्मा के अलावा न कोई पहले दूसरा था और न कोई आगे होने वाला है। यथा अश्वत्थ कणिकायाम, देखो एक छोटा सा बीज होता है अश्वत्थ का, पीपल का, उस पीपल के बीज के अंदर कैसी शक्ति है, कितना बड़ा वो वृक्ष पैदा होता है, कितने अनंत वृक्ष पैदा कर सकता है। ऐसे ये संसार नहीं था, एक परमात्म शक्ति थी, परमात्म तत्व था, उसी के अंदर से ही और उसी से अभिन्न रहते हुए संसार बना है। तो महाराज इसका ज्ञान नहीं हो पाता उस परमात्मा का। कहते हैं भाई, परमात्मा का ज्ञान वैसे होगा जब तुम निषिद्ध आचरण नहीं करोगे। देखो महाराज जी ने कई बार कहा है प्रार्थना में, असाधन का त्याग करने पर जो लाभ होता है वो साधन करने से नहीं होता। एक आदमी ये 10 घंटे राम राम करता है, वो देखता है 10 घंटे राम राम कर लिए, भजन कर लिया, अब चलो कोई बात नहीं दूसरी बातें सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर राम राम के प्रभाव से दूसरी बातों में जाएगा नहीं, ये तो उदाहरण के लिए बताया है। जो भगवान का भजन करेगा उसकी वृत्ति भगवान का नाम अपने आप ही हटा देगी, समय लगेगा। न अशुद्धम आचरे तस्मात अभीप्सन देह यापनम, उसको संसार से इतना ही संबंध रखना चाहिए कि मेरा शरीर यात्रा भोजन पानी वगैरह में कमी न आए, बस। जब ये अपने शरीर के आराम की तरफ चलता है तब वो पुण्य के अंदर पाप के अंदर फंसता है। इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि कि बस अपने अन्न जल की जितनी आवश्यकता है उतना यापन जीवन यापन कर सके उतना ही सब कुछ ठीक है। इसके अलावा यदि वो अशुद्ध आचरण करके धन कमाता है वहां से वो अपने पाप के रास्ते खोल देता है, लोभ बढ़ता है, काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, भय बढ़ता है और फिर राग द्वेष में फंस जाता है, पंचात्मक पंचभूतात्मक शरीर को भी वो अपना मान लेता है। यात्रार्थम अद्याद आहारम, केवल निर्वाह के लिए भोजन करे, किस भावना से करे, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात है। जैसे रोगी आदमी दवाई लेता है इस भावना से मनुष्य को भोजन करना चाहिए कि भूख एक बीमारी है और रोटी उसकी दवा है। स्वाद लेकर के और जो है लालच रख करके नहीं खाना चाहिए। दवाई को कोई लालच समझ के खाता है क्या? अरे आफत है रे देव, रे देव बीमारी के लिए। ऐसे ही यात्रार्थम अद्याद आहारम व्याधितो भेषजम यथा, ऐसे भोजन करना चाहिए। और जो गृहस्थ में रहने वाले हैं उन गृहस्थ व्यक्ति को अपने परिश्रम से कमाया हुआ केवल यात्रार्थ जो धन होता है उससे उसको बड़ा सुख मिलता है। सत्य शौच सरलता त्याग क्षमा धृति तपस्या इन सब के साथ में मनुष्य चलता है, संयम के साथ चलता है, तब जाकर उसको अपने आप का ज्ञान होता है। और इसके प्रसंग के अंदर अनेक प्रकार की बहुत सी बातें बताई जीवात्मा और परमात्मा के विषय में। वो बहुत बातें बताते बताते अंत में कहते हैं कि महाराज ये जनक जी महाराज थे, राज्य भी करते थे और अपराधी को दंड भी देते थे और जो है ये राजकोष भी रखते थे, प्रजा का पालन भी करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े लोग उनके पास कुछ सीखने के लिए आते थे। उनके अंदर ऐसी क्या ज्ञान की विशेष बात थी? तब युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर पितामह भीष्म आगे की बात बोलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण